अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बदर नज़ीर बाबर प्रोग्राम इस्लामी बातें लेकर हाज़िर हूँ। आप हमें देख रहे हैं बी फॉर यू यू के यूट्यूब चैनल और बी फॉर यू यू के फेसबुक पेज पर। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं या हमारा फेसबुक पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पर आप हमें देख रहे हैं तो हमें लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का मौजू है गीबत। दोस्तों, इस्लाम ऐसा माशरा कायम करना चाहता है जिसमें हर मुसलमान और हर इंसान की इज्जत व आबरू महफूज रहे और उनके बाहमी ताल्लुकात में तलखी पैदा ना हो। इस्लाम अफराद को ऐसी तमाम अखलाकी बुराइयों से पाक देखना चाहता है जिनसे मुसलमानों का वक़ार मजरूह होता है या जिनसे उनकी इज्जत व आबरू को सदमा पहुँचता और इंसानियत और शराफत पामाल होती। दोस्तों, मुसलमानों के अयूब जो ज़्यादा नुमाया होते हैं वो गीबत की मजमूम आदत से होते हैं, शायद किसी और बद अखलाकी से नहीं होते। इसलिए कुरान करीम में गीबत की सख्त ममानियत आई है। सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 12 में इरशाद हुआ, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। दोस्तों, कुरान करीम ने गीबत की मजम्मत करते हुए उसके लिए ख़ास तमसीली पैराए में बयान इख्तियार किया ताकि लोग इस मकरूह तरीन आदत की बुराई को समझ सकें। फरमाया गया कि क्या तुम में से कोई ये गवारा करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। तो उस आयत करीमा में यह हकीकत जहन नशीन कराई गई है कि इंसान का गोश्त दरअसल उसके फजल व शर्फ की बिना पर हराम करार दिया गया। हर वो चीज़ जो उसके नामूस वक़ार को सदमा पहुँचाए हराम है। बारहा ये देखने में आया है कि मग़लूबुल ग़ज़म कस्म के जो लोग होते हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो शायस्तगी से महरूम हो, अपने हरीफों से लड़ते हुए गुस्से की शिद्दत में उनका गोश्त नोच लेते हैं। बिलाशुबा ये एक बहीमाना हरकत, लेकिन अगर उस शख्स अपने हरीफ के मर जाने के बाद इस मजमूम फेल का इरतकाब करे यानी उसका गोश्त नोच ले तो ये इंतहाई अखलाकी दानाइयत के साथ एक बुजदलाना फेल भी है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी के रू दर रू उसकी बुराई करे, यकीनन ये भी कोई पसंदीदा बात नहीं है, लेकिन यही बुराई अगर पीठ पीछे की जाए तो उसे शदीद अखलाकी पस्ती कहा जाएगा, और ये ऐसी ही है जैसे मरे हुए आदमी का गोश्त नोचना। इससे इंसान की संगदिली और उसकी शकावत और बेरहमी का इजहार होता है, और ये हरकत उस लुत्फ़ व मोहब्बत के ख़िलाफ़ है जो इस्लाम मुसलमानों में पैदा करना चाहता। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद हदीस में गीबत करने वालों के अंजाम की वजाहत फरमाई। आपने फरमाया, शब मेराज में मेरा गुज़र ऐसे लोगों की तरफ हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वह अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने जिब्रील से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो दूसरों का गोश्त खाते थे और उनकी इज्जत व आबरू को सदमा पहुंचाते थे। ये उसूल दुनिया भी है और सुन्नत इलाहिया भी कि गुनाह जिस दर्जा का हो सज़ा भी उसी दर्जा की होगी। गीबत अगर भाइयों का गोश्त नोचने के मुतरादिफ है तो सज़ा भी यही दी गई है कि वह अपना गोश्त नोचते हैं। दोस्तों, अबू दाऊद ही की दूसरी हदीस है कि हजूर नबी करीम ने फरमाया, न मुसलमानों की गीबत करो ना उनके अयूब की तलाश में रहो, क्योंकि जो शख्स उनके अयूब की तलाश में रहेगा अल्लाह ताला भी उसकी ऐबजोई करेगा, और जिसकी ऐबजोई अल्लाह करेगा उसको उसके घर के अंदर ही रुसवा कर डालेगा। दोस्तों, इसके मुतल्लिक एक आम गलतफहमी यह है कि किसी की गैर मौजूदगी में उसको बुरा कहने का नाम है। बिलाशुबा लुगत में इसके शायद यही मायने हैं, लेकिन इस्लाम अखलाक में गैर मौजूदगी की कैद नहीं रखता। हज़रत अबू हुरैरा से यह हदीस मरवी है कि लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि गीबत किसको कहते हैं। आपने फरमाया, तुम्हारे अपने भाई की उस चीज़ का जिक्र करना गीबत है जिससे वह नापसंद करे। तो लोगों ने कहा, अगर मेरे भाई में वो आयब मौजूद हो तो? फिर फरमाया, अगर मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर नहीं है तो बहतान लगाया। दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि किसी की मौजूदगी में उसकी बुराई करना भी गीबत है। इससे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस्लाम बुरों की बुराई बयान करने को रोक देना चाहता है। इस्लाम ने खुद काफरों की सारी बुराइयां खोल खोल कर बयान की। उम्मत के अफराद भी दूसरों की बुराइयां जो उनमें मौजूद हैं بیان کر سکتے ہیں اگر مقصود اصلاح اور تنبیہ ہو. مظلوم کو ظالم کے ظلم و ستم کی داستان بیان کرنے کا حق ہے. شرعی حکم معلوم کرنے کے سلسلے میں بھی برائی بیان کی جا سکتی. لوگوں کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے بھی برائی بیان کی جا سکتی ہے. حضور نبی کریم نے خود ایک شخص کو قبیلے کا بدترین آدمی فرمایا تھا. تمام دینی اور معاشرتی جرائم کا اعلانیہ ارتکاب کرنے والوں کو بھی برا کہا جا سکتا ہے اور ان کی برائی بیان کی جا سکتی ہے. پھر بھی اسلامی ضابطہ اخلاق باہمی معاملات میں ان حدود سے متجاوز ہو کر کسی کی برائی کرنے کا مخالف ہے. قرآن شریف میں فرمایا گیا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کو بدگوئی پسند نہیں آئی مگر جو مظلوم ہو. دوستو غیبت انسانی خوبیوں کی عمارت کو مندہم کر دیتی اور اخلاق کے سارے سوتوں کو خشک کر دیتی. معاشرے پر اس کے ہولناک اثرات میں یہ بھی حامل ہوتا ہے کہ افراد میں باہمی بغض اور عداوت کی آگ بھڑک اٹھتی اور وہ کبھی کبھی اس کے شعلے جو ہیں وہ پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اور اس لپیٹ کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں. حسد تکبر اور سوئے زن کی دبی ہوئی چنگاری لوگوں کو غیبت پر ابھارتی ہے. دوستو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان ان تمام اخلاق و رذائل سے پاک ہو. اس لیے غیبت خواہ زبان سے ہو یا عمل سے اشارے سے یا کنائے سے طنز کی شکل میں ہو یا تعریض کی صورت میں بہرحال مضموم ہے. ہم جب بھی کسی کا ذکر کریں اپنے قلب کو ٹٹول لیں اپنے الفاظ کو تول لیں کیونکہ ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو فرشتہ لکھ لیتے ہیں. حضور نبی کریم نے بھی غیبت کو ناپسند فرمایا اور غیبت سننے کو بھی گناہ بتایا. دوستو بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا جس نے دوسروں کے بارے میں ایسی بات سنی ہو جو انہیں ناگوار ہو تو ان کے کان میں قیامت کے دن سیسا ڈالا جائے گا. بخاری کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم سے لوگوں نے پوچھا کہ غیبت کے گناہ کا کفارہ کیا ہے. آپ نے فرمایا جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرو یہی کفارہ. دوستو اسلامی معاشرے میں رہنے والا ہر انسان دوسرے انسان سے محبت کرے باہمی عزت کا ماحول پیدا کیا جائے معاشرے میں اخلاق کا بول بالا ہو اور حسن اخلاق اور حسن معاشرت اور حسن سلوک سے ہر شخص آراستہ ہو اس میں کامیابی ضرور ہو سکتی مگر ہمیں غیبت کے گناہ سے خود کو بچانا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو غیبت سے محفوظ رکھے اور ہماری مدد فرمائے. آمین ثم آمین. مجھے یقین ہے آج کی یہ چھوٹی سی نشست غیبت کے حوالے سے آپ کو پسند آئی ہوگی. میری دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے محفوظ رکھے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. میری دعاؤں میں تو آپ رہتے ہی ہیں. مدر نذیر بابر کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.